करें तो इसमें हम लोग कहाँ थे, सूरतुल हाक्का के अंदर। जी यहाँ तक पढ़ लिया था ना कि जो अल्लाह ताला का अर्श है उसको 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे, तो आयत नंबर 17 तक पढ़ चुके थे, आयत नंबर 18 से शुरू करना है। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو فرشتے ہوں گے وہ آسمان کے کناروں کی طرف جمع ہو جائیں گے، کیونکہ آسمان درمیان میں سے پھٹ جائے گا، اور پھٹ کر کے جس طرح سے کوئی چیز جو جیسے کوئی تینات ہوتی ہے، کوئی شیٹ ہوتی ہے، وہ بہت ہی سٹریچڈ ہوتی ہے چاروں طرف سے، تو اگر بیچ میں سے وہ پھٹ جائے تو اس کی جو بیچ کی پھٹان ہوتی ہے وہ سپریڈ کرتی ہے اس کے چاروں طرف، کناروں کی طرف. تو فرشتے بھی جو ہے چونکہ آسمان پہ رہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے پچھلے ہفتے آپ کی کلاس میں بات ہوئی تھی، فرشتوں کا آسمان جو ہے وہ عبادت خانہ ہے اور دفتر ہے جہاں بیٹھ کر کے وہ تدبیریں کرتے ہیں کاموں کی، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسائن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آسمانوں کے اوپر فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو یہ فرشتے جو ہے وہ آسمانوں کے پھر یعنی آسمان کے بالکل سائڈس کی طرف، کارنرس کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ والا آسمان کون سا آسمان ہے؟ یہ پہلا آسمان ہے جس کے ساتھ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ آسمان تو اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس یہ جو بیچ میں ایک گیپ پیدا ہو چکا ہوگا، اس گیپ میں سے فرشتے اتریں گے نیچے جہاں پر میدان حشر ہے، اور میدان حشر کے اوپر ساری مخلوق کھڑی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، باقی مخلوق، انسان، جن اور جانور. ٹھیک ہے، تو ان فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ تعالیٰ کا عرش بھی نیچے آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور تفسیر میں لکھا تھا جو خلاصہ تفسیر ہم پڑھ رہے تھے پیج نمبر 543 سے، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو 8 فرشتے اٹھا کر کے نیچے لے کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے 18 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم اذن، اس دن. یوم اذن کا ترجمہ نا اس دن سے کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں کچھ بتانے والے ہیں. تو یوم، دن، اور از اس کا مطلب ہوتا ہے جب، اس دن جب. تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، تم پیش کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، بلکہ ہاں تم پیش کیے جاؤ گے. تو رضونا لا تخفى منکم، کوئی چیز خفی نہیں رہے گی تم سے، خافیتن یعنی کوئی خفی چیز تم سے چھپی نہیں رہے گی. خافیتن خفی چیز کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کو. اور لا تخفى منکم، نہیں مخفی رہے گی تم سے. ٹھیک ہے، तो जो भी छुपी हुई चीजें इस दुनिया के अंदर हमें मालूम नहीं होती हैं, जैसे हम जो आमाल करते हैं तो उन आमाल का हिसाब रखा जा रहा है, ये हमें नजर नहीं आता, हमें मालूम नहीं होता, ठीक है। लेकिन उस दिन ये छुपी हुई चीज हमसे मख्फी नहीं रहेगी, बल्कि हमारा नाम है अमाल सामने ला दिया जाएगा, ठीक है, और हाथ में दे दिया जाएगा। जब हाथ में दे दिया जाएगा तो पता लग जाएगा कि उसके अंदर क्या है, वो क्या चीज है, ठीक है ना। तो अब इसके फौरन बाद अल्लाह ताला नामे अमाल का तस्करा शुरू कर देते हैं। अच्छा, खुलासे तफसीर से हम साथ साथ पढ़ते रहते हैं इन आयात की तफसीर को भी, कि गर्ज 8 फरिश्ते अर्श को उठाकर मैदान कयामत में लाएंगे और हिसाब शुरू होगा, जिसका आगे बयान है, यानी जिस रोज तुम खुदा के रूबरू हिसाब के वास्ते पेश किए जाओगे और तुम्हारी कोई बात अल्लाह ताला से पोशीदा ना होगी। फिर क्या होगा? नामे आमाल उड़ा कर हाथ में दिए जाएंगे, ठीक है, यानी उड़ते हुए नामे आमाल आएंगे और हाथों में इंसानों के पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर, फअम्मा मन ऊतिया किताबहू, एज फॉर हिम, फअम्मा, अम्मा का तर्जुमा आपको बताया था ना, एज फॉर अंग्रेजी में करते हैं, उर्दू में ऐसे कहेंगे कि जहां तक उसका ताल्लुक है, जिसको उसका नाम है आमाल दाएं हाथ में दिया गया, जहां तक उसका ताल्लुक है, तो अम्मा का तर्जुमा ऐसे होगा, जहां तक उसका ताल्लुक है, जहां तक उसकी बात है, राइट। मन ऊतिया किताबहू, जो दिया गया अपनी किताब, किताब से मुराद नामे आमाल, बे यमीनी ही, यमीन कहते हैं दाएं हाथ को, ठीक है, तो उसके दाएं हाथ में या अपने दाएं हाथ में नामे आमाल दिया गया, ठीक है, जैसे उर्दू में हम कहेंगे अपने दाएं हाथ में दिया गया, ठीक है। किसी को अगर कोई लफ्ज मजीद समझना हो तो आप पूछिएगा, ठीक है। तो यमीन जो है सीधे हाथ को कहते हैं। अच्छा, इस शख्स का तस्करा करते हुए फिर अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं कि इसके साथ क्या होगा। फा पस यकूलू, वो कहेगा, हा उम, ठीक है, कि जैसे एक आवाज लगाते हैं ना, बहुत खुश जब कोई बंदा होता है तो वाह 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 ऐसे आवाज लगाते हैं, ठीक है, या हो करके आवाज लगाते हैं, बहुत ही ज्यादा कोई खुश हो, बे इंतहा खुशी। और जाहिर है इस शख्स से ज्यादा खुशी तो क्या होगी किसी को, जिसको के उसके दाएं हाथ के अंदर नाम है अमाल मिल गया। तो ये बहुत जोर से ना खुशी वाली आवाज निकालेगा, हा, ठीक है। और इसका तर्जुमा जो है वो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे खुशी के मारे पास आने वालों से कहेगा कि लो लो लो, ठीक है, ये देखो ये देखो, उकराऊ किताबिया, मेरा ना, यानी कहेगा कि मेरा नाम है आमाल पढ़ो, उकराऊ पढ़ो, जैसे इकरा होता है ना पढ़, तो वो तो एक आदमी को जब आप हुक्म दे रहे हो पढ़ने का तो होगा इकरा, लेकिन यहां पर वो जितने उसके आसपास लोग मौजूद होंगे ना उन सबको कहेगा इकराऊ, यानी पढ़ो, किताबिया नाम है आमाल, ठीक है, उसका नाम है आमाल, किताबिया हूँ उसका नाम है आमाल। फिर उसके बाद ना वो खाली ये नहीं कहेगा बल्कि उसके आगे इसकी वजह भी बयान करेगा कि मुझे नाम है आमाल ऐसा क्यों मिला, ठीक है, इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, बेशक मैं गुमान करता था, यानी इस बात का गुमान करता था कि अन्नी, बेशक मुझे मुलाकिन हिसाबिया हूँ, मेरा हिसाब किताब मुझे मिलेगा, मेरे साथ मुलाकात करेगा, मुलाकिन ये वही मुलाकात का लफ्ज है उर्दू जुबान में, ठीक है, हिसाब हिसाबिया यानी उसका हिसाब, ठीक है, यानी वो कहेगा कि मेरा यही गुमान था कि कयामत के दिन हिसाब किताब होने वाला है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब किताब के लिए ही इस दुनिया की जिंदगी गुजारता था, सोच करके कदम उठाता था, सोच के काम करता था कि मैं आखिरत के लिए कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, राइट। तो इस तरीके से इसका हर कदम, इसका हर अमल ये आखिरत के लिए जखीरा बन जाता था, क्योंकि ये आखिरत को सोच करके अमल किया करता था ना। अब आखिरत को सोच करके कोई गुनाह तो नहीं कर सकता, राइट? आखिरत को सोच करके कोई वक्त जाया तो नहीं कर सकता उल्टे सीधे कामों के अंदर। तो ये जो था ना, ये यानी बेहतरीन बंदा था, अपने वक्त का हिसाब रखता था, ये अपने आमाल का हिसाब रखता था। तो इस वजह से इसके साथ ये मामला हुआ कयामत के दिन, कि उसको दाएं हाथ में नामे आमाल मिला। फिर इसके साथ नतीजा क्या होगा? फहुआ फी ईशतिर राविया, कि ये फिर अपनी मन मर्जी की जिंदगी में होगा। ये जगह है मन मर्जी की जिंदगी की। ईशा कहते हैं जिंदगी को, और राजिया यानी मर्जी वाली, खुशी वाली, रजा वाली, ठीक है? तो अल्लाह ताला फिर वहां पर हमारी मर्जियां पूरी करेंगे। तो इस दुनिया में जब हम मर्जियों को अपनी दबाएंगे अल्लाह की रजा के सामने, अल्लाह की रजा की खातिर अपनी रजा को छोड़ देंगे, तो फिर अल्लाह ताला वहां पर हमारी रजा को पूरी करेंगे, ठीक है? ये सौदा है, ये है सौदा इंसान के साथ, ठीक है? फी जन्नतिन आलिया, ऊंचे ऊंचे बागात के अंदर होंगे, ठीक है? जन्नत बाग को कहते हैं, और आलिया तुन आली यानी ऊंचे, ठीक है? जैसे कि अगर आपने किसी बड़ी जगह पर, अमीर जगह पर, दुनिया में जो बड़ी जगहें कहलाती हैं, वहां पर आपने कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स देखी होंगी, तो उन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर जो पेंट हाउस होता है वो सबसे ऊंचा अपार्टमेंट होता है टॉप फ्लोर के ऊपर, और उसकी सबसे ज्यादा कीमत होती है उसकी व्यू की वजह से, ठीक है? वहां पर जो बेसिकली व्यू ही होता है, और उसके अलावा उसके अंदर और फैसिलिटीज वगैरह भी एक्स्ट्रा होती होंगी। तो ऊंची जो कॉन्सेप्ट है ना, ऊंचाई का कॉन्सेप्ट, ये इस दुनिया में भी मौजूद होता है। हमारे मुल्कों के अंदर तो कोई फर्क ही नहीं होता ना, और लिफ्ट का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, अब तो हो गया बिल्डिंग्स के अंदर, लेकिन पहले लिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था, सीढ़ियों का कॉन्सेप्ट था, और कोई ऐसी फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती थी। तो ग्राउंड फ्लोर को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, ठीक है ना? ऐसे बिल्डिंग्स के अंदर ग्राउंड फ्लोर सबसे महंगा होता है, लेकिन उसकी वजह होती है कि लिफ्ट नहीं होती, ठीक है? लेकिन बाहर के मुल्कों के अंदर ग्राउंड फ्लोर महंगा नहीं होता, बल्कि ऊपर के फ्लोर महंगे होते हैं। कुतूफुहा दानियतुन, कुतूफ मेवे यानी उनके मेवे दानियतुन झुके पड़े पड़े हुए होंगे, ठीक है? यानी दरख्तों के जो शाखों के अंदर मेवे लगे होंगे, तो वो शाखें लंबी लंबी होंगी और झुक झुक करके ये जन्नतियों के करीब आ रही होंगी, ठीक है? इजिली एक्सेसिबल। कुलू वशरबू, खाओ, यानी इसको कहा जाएगा कि खाओ, वशरबू और पियो, ठीक है? यानी इशरबू है ये लफ्ज, वाओ तो बीच में है ना और के लिए, तो असल में ये है इशरबू यानी तुम पियो। हनी अम, खूब रच करके यानी खूब अपना दिल भर करके खाओ भी और पियो भी। बेमा, इस वजह से के असदफ तुम फिल अयामिल खालिया, जो आगे तुम भेज चुके हो पिछले दिनों में, यानी ये जो तुम्हें मिल रहे हैं ना यहाँ पर, ये सारी वो चीजें हैं कि जिनकी तुम दुनिया में पेमेंट कर चुके हो अपने ईमान की वजह से, अपने आमाले सालेहा की वजह से। अब इनको तुम कैश करो, अब इनको तुम इस्तेमाल करो, ठीक है? असलफ तुम, असलफ युसलिफु इसलाफन, ठीक है? जो आगे के चीज होती है ना, इसलाफ, हमारे असलाफ कौन है, हम कहते हैं ना हमारे ये असलाफ है, ठीक है? यानी जो हमसे आगे रहते हैं दीन के अंदर, आगे आगे रहते हैं, उनको हम असलाफ कहते हैं। सहाबाए कराम हमारे असलाफ हैं, क्योंकि दीन में हमसे सबसे आगे हैं सहाबाए कराम, ठीक है? तो असलफ तुम का मतलब होता है आगे, तुमने भेजा, तुमने आगे भेजा, कब भेजा? अय्यामिल खालिया के अंदर। तो खालिया वो दिन है जो कि गुजर चुके हैं, पिछले दिन गुजरे हुए दिन, उनके अंदर तुमने इन अमाल को आगे भेजा था। अब अल्लाह ताला ने इन अमाल को इन नेमतों में कन्वर्ट कर दिया है जन्नत के अंदर, ठीक है? तो यहां तक उस बंदे का जिक्र है कि जिसके दाहिने हाथ के अंदर नामे अमाल दिया गया। तो अब खुलासे तफसीर से मजीद इसको पढ़ लेते हैं कि जिस शख्स का नामे अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, तो वो खुशी के मारे आसपास वालों से कहेगा कि मेरा नामे अमाल पढ़ लो। मेरा तो पहले ही से ये एतकाद था کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے، یعنی میں قیامت اور حساب کا معتقد تھا، اعتقاد تھا میرا قیامت کے اوپر اور حساب کتاب کے اوپر. مطلب یہ کہ میں ایمان اور تصدیق رکھتا تھا، خدا تعالیٰ نے اس کی برکت سے آج مجھ کو نوازا. غرض وہ شخص پسندیدہ عیش یعنی بہشت بری میں ہوگا، اونچی بہشت میں یعنی جنت میں ہوگا، جس کے میوے اس قدر جھکے ہوئے ہوں گے کہ جس حالت میں چاہیں گے لے سکیں گے، اور حکم ہوگا کہ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ. ان اعمال کے صلے میں جو تم نے با امید صلہ گزشتہ ایام یعنی زمانہ قیام دنیا میں کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس دنیا کی زندگی میں جو تم نے قیامت کے صلے کی امید کے اندر اعمال کیے تھے، اس کے بدلے میں تمہیں یہ ساری چیزیں ملی ہیں. اچھا، اب تذکرہ ہے دوسرے شخص کا، دوسرے قسم کے اشخاص کا. وَأَمَّا اینڈ ایز فار مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ، جو دیا گیا اپنی کتاب، بِشِمَالِهِ، اپنے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، بس وہ کہے گا، يَا لَيْتَنِي، اے کاش. حسرت والی جو آواز ہوتی ہے نا، اب اس کے اندر خوشی نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک افسردگی ہوتی ہے. اے کاش، لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہیں گئی ہوتی، رائٹ، کہ نامِ اعمال مجھے پکڑایا ہی نہ گیا ہوتا. کیونکہ بائیں ہاتھ میں آنے کی وجہ سے ہی سمجھ جائے گا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، رائٹ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور مجھ کو خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. مَا حِسَابِيَا، میرا حساب کیا ہے. ادرا یدری ادراً، ٹھیک ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ادراک ہونا، ٹھیک ہے، پتہ چل جانا کسی چیز کا، اندازہ ہو جانا کسی چیز کے بارے میں، تو اس کو ہم اردو میں ادراک کہتے ہیں، رائٹ. تو یہ عربی سے آیا ادرا، ادرا یدری ادراکن، ٹھیک ہے. لم ادری، مجھے پتا نہ چلتا، ٹھیک ہے، مجھے ادراک نہ ہوتا. ما حساب، یا میرا کیا حساب ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اسی طرح وہی موت ختم کر جاتی، ٹھیک ہے. یعنی وہ کہے گا، پھر کہے گا، یا لیتا، اے کاش، یا لیتہا. اب یہ یا لیتنی کی بجائے کہہ رہا ہے یا لیتہا، کیونکہ یہ سب پروناؤنز ہوتے ہیں، جو تھوڑے بہت گرامر آپ نے اگر پڑھی ہے کبھی، تو پروناؤنز جو ہوتے ہیں نا، یہ عربی زبان میں ورڈ کے آخر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہو ہے، ہو لگا رہتا ہے، یہ شمالی ہی میں ہی لگا ہوا ہے. اسی طرح یہ نی کے اندر جو یا لگا ہوا ہے نا، تو یا جو ہے یہ سپیکر کا پروناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بات کر رہا ہے نا وہ اپنے بارے میں، کہ مجھے پتا نہ، یعنی میں، ٹھیک ہے، یہ متکلم کا پروناؤن ہوتا ہے یا جو آخر میں لگی ہوئی ہے. اور یہاں پر یا لیتا ہا، اس میں ہا کا پروناؤن لگا ہوا ہے. ہا کا پروناؤن جو ہوتا ہے وہ شی کے لیے یا ہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر انگلش میں ہوتا ہے نا، ایچ ای آر، ہر، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہہ رہا ہے یا لیتا ہا، کاش کہ وہ، یعنی وہ سے مراد موت یہاں پر، ٹھیک ہے. کانت القاضیہ، ٹھیک ہے، قاضیہ، یہاں پر قاضیہ سے کیا مطلب ہے؟ قاضیہ کا مطلب ہے کہ فیصلہ تمام کر جانا، بات کو ختم کر جانا. جیسے کوئی قاضی ہوتا ہے نا، تو اس کے سامنے کوئی کیس پریزنٹ کیا جاتا ہے، دلائل پریزنٹ کیے جاتے ہیں اس سائڈ کے بھی اور اس سائڈ کے بھی، تو قاضی جو ہے وہ ان دلائل کو سن کر کے کیس کو کیا کرتا ہے، نپٹا دیتا ہے. نپٹانا کہتے ہیں نا، یعنی فیصلہ سنا دیتا ہے، کیس نبٹ جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ، قاضی کا کانسیپٹ کیا ہے، نپٹانے کا کانسیپٹ، ختم کر دینے کا کانسیپٹ، جھگڑا نپٹا دینا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے کہے گا کہ کاش کہ جو میری موت تھی نا، وہی سارا معاملہ نپٹا دیتی، ختم کر دیتی، حساب کتاب تک نوبت ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے، حساب کتاب تک نوبت ہی نہیں آتی. یہ ہے اس آیت کا مطلب، کہ کاش کہ میری موت ہی मेरा किस्सा तमाम कर देती, ठीक है, और ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। मा अगना अन्नी मालिया, कुछ काम नहीं आया मुझको मेरा माल, राइट। मा अगना, अगना युगनी इगनाअन का मतलब होता है कि यानी काम आना, किसी के लिए सफिशिएंट हो जाना, किसी की जरूरियात को पूरा कर देना। इसी वजह से जो मालदार लोग होते हैं ना उनको गनी कहा जाता है, क्योंकि गनी के पास इतना माल होता है कि जिससे कि उसकी जरूरियात पूरी हो जाती है। तो ये अगना का मतलब यही होता है कि जरूरियात पूरी हो जाना, ठीक है। तो कह रहे माँ अगना, नहीं जरूरत पूरी हुई या नहीं जरूरत पूरी करी, अन्नी मेरी, ठीक है, यानी मुझसे जरूरत पूरी नहीं करी मालियाहू, मेरे माल ने, यानी एक्चुअली एक्चुअली थर्ड पर्सन के तौर पर अल्लाह ताला उस शख्स के बारे में बता रहे हैं कि उसकी जो यहाँ पर हाजत आई हुई है ना, ये कि इसके नामे अमाल को उसके सुपुर्द किया गया है और इसके ऊपर मुसीबत टूट टूट पड़ी है, तो जो इसने माल कमाया था दुनिया की जिंदगी में, वो माल इसके अब किसी काम का नहीं है, वो माल इसके ऊपर से इस मुसीबत को नहीं हटा सकता, ठीक है। तो इस दुनिया के अंदर हलाल हराम की तमीज किए बगैर जो माल कमा रहे होते हैं, राइट, दिन रात एक करके माल कमा रहे होते हैं, और औलाद की ईमान की फिक्र नहीं, अपने ईमान की फिक्र नहीं, अपनी इबादत की फिक्र नहीं, फराइज की फिक्र नहीं, राइट, किसी चीज की फिक्र नहीं, बस माल समेट रहे हैं, माल समेट रहे हैं, माल समेट रहे हैं, दिन रात जॉब करके, दिन रात जो है वो बिजनेस करके, तिजारत करके, प्लानिंग करके माल समेट रहे हैं, माल समेट रहे हैं, और दीन की कोई फिक्र नहीं, तो ये माल फिर हमारे किसी काम नहीं आएगा उस दिन, ठीक है, बल्कि हमारे अमाल गले पड़ जाएंगे, हमारे हमारी औलादें हमारे गले पड़ जाएंगी कि आपने इतना माल समेटा, आपने हमारे ईमान की क्यों नहीं फिक्र करी, हमें क्यों नहीं दीन सिखाया, ठीक है। हलक अन्नी सुल्तानिया, हलाक हो गई मुझसे मेरी सुल्तानी। सुल्तान कहते हैं पावर को, ठीक है, हुकूमत, पावर, ताकत, इन सब के लिए सुल्तान का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी वजह से ना जो बादशाह होता है उसको भी सुल्तान इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि इस लफ्ज का मतलब ही होता है ताकत, ठीक है, अथॉरिटी। तो हलका, हलाक हो गई, अन्नी मुझसे मेरी ताकत, ठीक है, हलक अन्नी सुल्तानिया, बर्बाद हुई मुझसे हुकूमत मेरी, यानी अब मेरे पास कोई हुकूमत नहीं है, जिसके लिए मैंने दुनिया के अंदर जुल्म किए, झूठ बोले, लोगों को धोखे दिए, अब वो सब मेरे पास से खत्म हो चुकी है। तो ये तो इस शख्स का अपना हाल, अब इस शख्स के साथ करा किया जाएगा जैसे कि ऊपर वाले के साथ क्या किया गया था कि फहुआ फी ईशत राविया, उसको उसकी रजा वाली जिंदगी में डाल दिया गया, इसके साथ क्या किया जाएगा, खुजूहू फगुल्लूहू, बस पकड़ो इसको, खुज कहते हैं पकड़ने को, तो फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा पकड़ो इसको, फगुल्लूहू, फिर इसके गर्दन के अंदर तौक डालो, ठीक है, गुल्लू यानी गुल का मतलब होता है यानी ऐसा तौक, ऐसी जंजीरों का एक यानी लोहे का बना हुआ एक ऐसी चीज के जिसके जरिए से ना गर्दन जो है वो एकदम अकड़ जाए, फंस जाए उसके अंदर, तो गर्दन के तौक को गुल कहते हैं, तो गुल्लू हो, फिर उसके गर्दन में तौक डालो, सुम्मा फिर उसके बाद, सुम्मा का तर्जुमा फिर, अल जहीमा सल्लू हो, जहन्नुम के अंदर इसको डाल दो, सल्ला का मतलब होता है डाल देना, तो इसको डाल दो, फेंक दो जहन्नुम के अंदर, सुम्मा फिर फी सिलसिलतिन, एक जंजीर में, फी का मतलब में, सिलसिलतिन जंजीर को कहते हैं, ठीक है, यानी चेन, सिलसिला जो हम कहते हैं ना उर्दू में भी लफ्ज सिलसिला होता है, तो ये एक्चुअली अरबी जुबान के अंदर ये चेन से निकला, सिलसिला एक्चुअली अरबी में चेन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके अंदर कड़ियां एक दूसरे के अंदर पिरोई हुई होती हैं, तो वो एक सिलसिला होता है, ठीक है। सलासिल का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, पैबंद, हमारे उर्दू में कहते हैं पाबंद सलासिल, यानी इसको जंजीरों में पाबंद किया हुआ है, पाबंद सलासिल, ठीक है, तो सिलसिला का मतलब होता है चेन, जंजीर। तो सुम्मा फी सिलसिलतिन, फिर एक जंजीर में, ज़रउहा उसका तूल, ज़रा कहते हैं तूल को, लंबाई को, ठीक है, तो ज़रउहा उसकी लंबाई 70 ज़िराअन, 70 गज है, ठीक है, यानी कयामत के दिन क्या है के अंदर जो है ना वो जो 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 मेजरमेंट होगी वो मेजरमेंट जो है वो यानी हमारे हिसाब से होगी, ठीक है, कि जैसे जिसको हम 70 गज कहते हैं तो उसी 70 गज के हिसाब से अब एक बंदे के ऊपर 70 गज लंबी जंजीर डाल दी जाए, ठीक है, तो 70 ज़िराअन, 70 कहते हैं 70 को, जैसे सबा कहते हैं 7 को, तो 70 70 को कहते हैं। ज़िराअन का मतलब यानी उस लंबाई के एतबार से वो 70 गज होंगे। फसलुकूहू, फिर उसको पकड़ दो, जकड़ दो, बल्कि इस जंजीर के अंदर जो 70 गज लंबी जंजीर है इसमें इसको जकड़ दो, ठीक है, ये इसके साथ क्यों होगा? इन्नहू, बेशक ये, काना होता था, ला युमिनु, नहीं ईमान लाता, बिल्लाहिल अजीम, अल्लाह ताला पर, यानी ये अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाता था, ठीक है, अल्लाह ताला पर ईमान, कभी आपने सुना है कि अल्लाह ताला पर तो सब ईमान लेकर के आते हैं, ये बात आपको पता है कि हर बंदा ये अल्लाह ताला पर ईमान लाता है, अल्लाह ताला पर हर बंदे का ईमान होता है, ठीक है, क्या मतलब है इस जुमले का जो अभी आजिस कह रहा है, हर बंदे का अल्लाह ताला पर ईमान होता है, इसका क्या मतलब है? क्या हिंदू का भी अल्लाह ताला पर ईमान होता है? क्या यहूदी, ईसाई, मुशरिक, पारसी, आग का पूजा करने वाला, इन सब का अल्लाह ताला पर ईमान होता है? क्या मतलब इस बात का कि अल्लाह ताला पर ईमान होता है? जब पैदा होता है, अच्छा, तो इतना छोटा बच्चा जो है ये सारी बातें सोचता है, तो अल्लाह ताला पर ईमान होने का मतलब, ये छोटे बच्चे की बात अभी छोड़ दें, अभी हम छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब इंसानों की बात कर रहे हैं, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, बूढ़े हों, जवान हों, मर्द हों, औरत हों, सब, हर कोई मानता है कि खुदा है, सबका ईमान होता है कि ऊपर कोई है, हाँ ऊपर कोई है, ऐसे मुराद यानी कोई बनाने वाला है, ठीक है, हर कोई जानता है कि कोई खुदा है, खुदा से मुराद उनकी होती है कि कोई बनाने वाला है, ठीक है, और कोई जो है ना वो काम चलाने वाला है, काम चलाने वाला, ये सब यानी एक कुदरत वाला कोई है, हर कोई इस बात को जानता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी फिक्र है, ऐसी सोच है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में डाल करके उसको पैदा किया है, ठीक है, अब ये उसकी फितरत के अंदर मौजूद है, ये कहीं जाती नहीं है, ये मौजूद रहती है उसकी उसकी फितरत के अंदर, ठीक है, तो बचपन में तो ये फितरत लेके पैदा होता है और बड़े होकर के ना ये फितरत तो रहती है उसके अंदर मौजूद, ठीक है, मगर एथियस तो नहीं मानते। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि एथियस तो नहीं मानते, तो भाई मानना तो एक अलग चीज होती है, हम तो यहां पर मानने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो यहां पर जानने की बात कर रहे हैं, जानना, ठीक है, तो हर कोई जानता है कि एक बनाने वाला है, ठीक है, मानना एक अलग चीज होती है, तो ईमान का लफ्ज खाली इसलिए इस्तेमाल किया यहां पर क्योंकि ये अनदेखे अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं ना, अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को अपने अंदर ही अंदर मानते हैं, अंदर मानते हैं, अपने दिल में मानते हैं, अपने सोच में मानते हैं, बगैर देखे हुए, किसी ने अल्लाह को देखा तो नहीं होता, किसी ने भी नहीं देखा अल्लाह ताला को, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला की मौजूदगी को ये अपने दिल ही दिल में मानते हैं,
اس وجہ سے ان کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ پر تو سارے ہی مان لے کر کے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے ایمان کا لفظ استعمال کیا تھا خالی, ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو نہیں مانتے, جیسا کہ یہاں پر تذکرہ ہے کہ انہ کانا لا یؤمنو باللہ العظیم, یہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے, تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے, ٹھیک ہے. جیسے کسی یہودی کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا ہندو کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ہندو جو ہے وہ ایشور کو خدا مانتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی بھگوان بولیں, یا بھگوان شاید کسی اور کو بولتے ہیں, کسی مشرک یعنی کسی شریک کو بولتے ہیں, لیکن جو اصل خدا ہے نا, بنانے والا, جہاں تک میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایشور ہے ہندوؤں کے نزدیک, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کرسچنز کے نزدیک اس کو گاڈ بولتے ہیں, یا عربی میں اگر بولیں کرسچنز تو اس کو کیا کہتے ہیں, ایلوا ہوتا ہے عربی کا ٹرم کرسچنز کے نزدیک اللہ کے لیے, ٹھیک ہے, ایلیا یا ایلوا اس طرح کا لفظ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں, تو پھر جو قیامت کے دن کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے, وہ کیوں کہا جا رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے پاس کبھی آتا بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو کوئی حکم کیا؟ یہ کس کو نہیں مانتے؟ وحدانیت پر یقین نہیں ہوتا, یہ کس کی حکم عدولی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے؟ کس کی حکم عدولی کر رہے ہیں, کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تو کبھی حکم ان کے پاس آیا ہی نہیں نا, ٹھیک ہے نا. اللہ کی آواز کبھی آئی آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کبھی آیا اللہ کا حکم؟ اللہ کا حکم کبھی آپ کے پاس آیا؟ اللہ نے کبھی آپ کو حکم دیا؟ مجھے تو اس بات کا جواب چاہیے. حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم تو بھائی یا تو لکھ کر کے کوئی بھیجے کوئی چیز, ٹھیک ہے, یا آواز میں بھیجے کوئی چیز, آواز سنائے ہمیں, ٹھیک ہے. حکم تو اس طرح سے دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس تو نہ کبھی اللہ کی آواز آئی, نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی لیٹر آیا ہمارے پاس جس میں اللہ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ سگنیچر ہوا ہوا اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. نہ تو میرے پاس تو خیر کبھی بھی نہیں آیا, آپ کے پاس شاید آیا ہو, آپ ماشاء اللہ اللہ والی ہوں گی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے پاس ڈائریکٹ اللہ کے حکم آتے ہوں گے, میرے پاس تو کبھی بھی نہیں آیا, ٹھیک ہے. قرآن کے اندر کوئی اللہ کی اسٹیمپ نہیں لگی ہوئی ہے, قرآن کے اندر کوئی اللہ کا سگنیچر نہیں ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے. قرآن جو ہے وہ کوئی اللہ کے ہاتھ, کہیں آسمان سے ہاتھ نکلا اللہ تعالیٰ کا اور وہ قرآن نیچے ہمارے پاس آ گیا اللہ کے ہاتھ کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں پکچر کے اندر بھائی, اللہ تعالیٰ تو حکم جس طرح حکم دیا جاتا ہے نا, اس حکم کے طریقے پہ تو اللہ تعالیٰ کہیں کہیں نظر ہی نہیں آتے, کہیں ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی سیدھی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم ماننا, اللہ کے رسول, ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا, جو کہ جن کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے, اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے. جیسے آپ نے لکھا نا, پرائیویٹلی لکھا انہوں نے, پڑھ لیتا ہوں, کہ اللہ کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, نہیں سنت نہیں, ٹھیک ہے, سنت کی بات نہیں. سنت تو ہوتا ہے جو ان کا طریقہ, جو وہ کام کرتے تھے, جس طریقے سے وہ رہتے تھے, یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں. یہاں پر سنتوں کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر حکم کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حکم دیا, ٹھیک ہے, کلمہ پڑھو, رائٹ, بتوں کو چھوڑو, یہ حکم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو انہوں نے نہیں مانا, ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کری, ٹھیک ہے, ایک اللہ کی عبادت نہیں کری, بلکہ بہت سارے الہوں کی عبادت کری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر انہوں نے اپنے دوسرے بتوں کو ترک نہیں کیا اور صرف ایک اللہ کو اختیار نہیں کیا. تو اللہ پر ایمان لانے کا اصل میں مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانا, ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے رسول ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک بات پہنچائی ہے. یہ قرآن جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیبلٹ کی شکل میں بھی نہیں دیا. ٹیبلٹ سے مراد وہ جو لکھی ہوئی تختیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی کاغذ کی شکل میں, کسی شکل میں بھی نہیں دیا نا. یہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے صحابہ نے سنا. ٹھیک ہے, زبان مبارک سے صحابہ نے سنا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زبان تھی نا, وہ کوئی اللہ کی زبان تو نہیں تھی, وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان تھی. ٹھیک ہے, تو جس نے بھی انکار کیا اس نے تو نبی کا انکار کیا نا. اللہ کی اگر زبان کسی شکل میں اگر کسی شکل میں آتی تب کہتے ہیں نا کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اصل میں تو انکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا جا رہا تھا نا. ٹھیک ہے, تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنا انکار قرار دیا ہے, اسی کو اپنا انکار قرار دیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہ لانا قرار دے دیا, بلکہ یہ تو اللہ کے الفاظ ہے نا, قرآن کے الفاظ ہے نا. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر کے آئے, ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو اپنے سے اختلاف قرار دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نبی کی ویلیو, یہ ہے نبی کا مقام. ٹھیک ہے, کہ نبی کو مانو گے تو اللہ کو ماننا قرار پاؤ گے, اور نبی کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کے قصوروار ٹھہرائے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد جو آپ کا ایک سوال رہ گیا تھا کہ یہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہے, تو اس کا جواب جو ہے نا بہت ہی سیدھا ہے, بہت ہی سادہ سا جواب ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, اگر آپ سے پوچھیں کہ بھئی دل میں تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہر انسان کے ہے, تو ایتھیسٹ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کسی مسلمان بچے کو فطرت میں پیدا کیا, اسی طرح ایتھیسٹ بچہ جو بعد میں جا کے ایتھیسٹ بن جاتا ہے اس کو بھی فطرت میں پیدا کیا, تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے, کیوں کہتے ہیں بھائی, جب ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں. ایک لفظ میں اگر اس کا آپ جواب دے دیں, ایک لفظ ہے اس کا جواب, بس زیادہ آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بہت ہی سیدھا سا. جی تو ایتھیس جو ہے اللہ کے وجود کا ہی انکار کر رہے ہوتے ہیں, کیوں کر رہے ہوتے ہیں, اتنا آسان جواب ہے جتنا آسان شاید کوئی اور جواب نہ ہو. جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, جھوٹ, سمجھ گئے بات, جھوٹ, بس دیٹس اٹ, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, کیونکہ اندر تو ان کو پتا ہے, حقیقت میں ان کو پتا ہے کہ ہے کوئی. ٹھیک ہے کوئی, اب کون ہے, کیا اس کی صفات ہیں, یہ ان کو نہیں پتا ہوتا, لیکن موجودگی کا تو ان کو پتا ہوتا ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کو اس احساس کے ساتھ کہ ایک اللہ ہے, ایک بنانے والا ہے, ایک چلانے والا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو بڑے ہو کر کے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے اندر موجود اللہ کے احساس کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ایتھیزم بھی جو ہے نا یہ بھی کفر ہے, یہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے کوئی, یعنی جس طرح ایک ہندو کفر کرتا ہے, عیسائی کفر کرتا ہے, کوئی بھی اور کفر کرتا ہے, اسی طریقے سے ایتھیس بھی کفر ہی کر رہا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو جانتے ہوئے وہ اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایتھیس بھی ایک نارمل کافر ہی ہے بیسیکلی, یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے دنیا کے اندر کہ نئے لوگ پیدا ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں, سائنس وائنس پڑھ لی ہے انہوں نے اس وجہ سے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں, نہیں, اس کا تعلق سائنس سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, اس کا تعلق جو ہے وہ سیدھا سیدھا شیطان اور نفس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ہاں, ایک نیا طریقہ انہوں نے, یہ شیطان اور نفس نے جو ہے نا وہ آج کل کے لوگوں کو ایک نیا ایکسکیوز سکھا دیا ہے. ٹھیک ہے, کہ بھئی چونکہ سائنس میں آپ پروو نہیں کر سکتے اللہ کی ذات کو, سائنس سے پروو نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے اس کا انکار کر دو, لیکن ये तो एक सिर्फ एक नया एक्सक्यूज है, नया बहाना है, और कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। ये है वही पुरानी बात कि अल्लाह का इनकार करना है, ठीक है। तो सिर्फ बहाने से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है एथियोजम की, ठीक है। तो ये लोग जो है ना वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते थे, यानी अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाते थे। वला यहुदु अला ताआमिल मिस्कीन, अब आमाल की बात हो रही है कि मिस्कीन को खाना खिलाने पर उभारते नहीं थे किसी को, ठीक है, यानी किसी दूसरे को ताकीद नहीं करते थे, किसी दूसरे को तरगीब नहीं देते थे कि भाई मिस्कीनों को खाना खिलाना चाहिए। तो अब क्या मतलब, क्या खुद खिलाने की जरूरत नहीं है, बस दूसरों को ताकीद करते रहो? नहीं, बल्कि मकसद यहाँ पर यह है कि जो शख्स किसी दूसरे को ताकीद नहीं करता तो वो तो खुद तो वो बिल्कुल ही नहीं करता ना, क्योंकि जब कोई खुद करेगा ना कोई नेकी का काम, नेकी का काम जब कोई खुद करेगा तो फिर वो दूसरों को भी ताकीद करेगा नेकी का काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो खुद नेकी का काम नहीं करेगा तो फिर वो दूसरों को क्या खाक ताकीद करेगा, ठीक है। तो वला यहुदु अला ताअमिल मिस्कीन इस तरह से फरमाया कि इसमें ना फिर दोनों किस्म के लोग आ गए। एक वो लोग आ गए जो कि खुद भी नहीं खिलाते किसी को खाना, किसी मिस्कीन को खाना खुद भी नहीं खिलाते, ठीक है ना। तो भाई वो तो किसी दूसरे को क्या ताकीद करेंगे, क्योंकि वो इसको नेकी का काम ही नहीं समझते गरीबों को खाना खिलाना। और दूसरे किस्म के लोग हो गए कि
करना
जो कि
नहीं अलग है।
तो अगर कभी खिला भी दें गलती से, ठीक है, लेकिन वो भी जो है ना किसी दूसरे को इसकी तरगीब नहीं देते हैं कि भाई आप भी खिला दिया करें, और ठीक है। तो ये भी ना काफिर की एक एक एक, एक, एक सिफत हो गई, ये मिस्कीनों के साथ इस तरह से एहसान वाला मामला नहीं करता था, ठीक है। तो यहां पर मुकम्मल हुआ उस शख्स का तذکرہ, बल्कि अभी इसका तذکرہ थोड़ा और भी आगे चल रहा है कि जहन्नुम में इसके साथ क्या क्या मामला होगा। तो उससे पहले बस मैं चाह रहा था कि ये खुलासे तफसीर से इसके बारे में जरा जरा सब पढ़ लें। तो खुलासे तफसीर पेज नंबर 543 पे जो आखिरी चंद लाइनें, उसको हम पढ़ रहे हैं कि जिसका नामा आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा सो वो निहायत हसरत से कहेगा कि क्या अच्छा होता कि मुझको मेरा नामा आमाल ही ना मिलता, और मुझको ये खबर ही ना होती कि मेरा हिसाब क्या है। क्या अच्छा होता कि पहली मौत ही मेरा खात्मा कर चुकी होती, अब ये मुझे दोबारा से जिंदा ना कर दिया गया होता, और दोबारा जिंदा ना होते जिस पर ये हिसाब किताब मुरतब हुआ। अफसोस, ठीक है। तो अभी अफसोस, कफे अफसोस मरेगा, मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरा जाह भी मुझसे गया गुजरा, यानी माल और जाह सब बेसूद ठहरे ऐसे शख्स के लिए फरिश्तों को हुक्म होगा कि, यानी माल भी इसके किसी काम नहीं आया, और सुल्तानी, सुल्तानी के लिए दूसरा लफ्ज क्या होता है, जाह। जाह मतलब एक एक दुनिया के मुआशरती पोजिशन को जाह कहते हैं, ठीक है। अपना मुकाम, अपना मर्तबा, इसके लिए जाह का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चाहे वो मुल्क का बादशाह हो तो भी उसके पास मुकाम और मर्तबा होता है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास कोई बादशाहत नहीं होती है, उनके पास कोई गवर्नरशिप नहीं होती है, लेकिन अपनी दौलत की वजह से वो यानी जाह वाले होते हैं, मुकाम वाले होते हैं। तो ये जो है ना उस उनको कोई काम नहीं आएगा। तो फरिश्तों को हुक्म होगा कि इस शख्स को पकड़ो और इसे गले में तौक पहना दो, फिर दोजख में उसको दाखिल करो, फिर एक ऐसी जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 गज है उसको जकड़ दो। इस गज की मकदार अल्लाह को मालूम है, क्योंकि ये गज वहां का गज होगा। आगे इस अजाब की वजह बताते हैं, ठीक है, क्योंकि कयामत के दिन ना, अब वैसे तो इंसान को जो है ना एक नया जिस्म अलॉट होगा, ठीक है ना, हम सबको नए जिस्म अलॉट होंगे, पुराने जिस्म जो है ना वो खत्म हो चुके, मिट्टी के अंदर गल के खत्म हो चुके, और उस जिस्म का ताल्लुक जो है वो इस दुनिया की जिंदगी के साथ था, या ज्यादा से ज्यादा जिनके जिस्म सलामत रहे तो वो बरजख की जिंदगी तक उसका ताल्लुक रहा जिस्म का, ठीक है। अब जो कयामत के अंदर उठाए जाएंगे ना, तो वहां पर तो नए जिस्म से उठाए जाएंगे। अब ये नया जिस्म जो होगा ना, उसमें शक्लो सूरत तो वैसी होगी, ठीक है, जैसी इस दुनिया के अंदर है, लेकिन उसका साइज और उसके अंदर जो ताकत होगी ना, वो इस दुनिया की ताकत और साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अगरचे के शेप और शक्लो सूरत वैसी होगी, क्योंकि वहां पर भी लोग हमें पहचान लेंगे, ओ तुम तो वो हो, अच्छा, जो अपने भाई की तरफ भागेगा कि ए भाई मुझे अपने नामे अमाल में से कोई नेकी दे दो, तो वो कैसे अपने भाई को पहचानेगा, भाई की शक्ल सूरत देख करके पहचानेगा ना। तो यानी शक्ल सूरत वही दुनिया वाली होगी, लेकिन जो बॉडी होगी वो पहले के मुकाबले में बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि कयामत के दिन की सख्तियां जो है ना, इस दुनिया का जो हमारा क्या कहते हैं छटाकी वाला बदन, छटाकी का जो बदन है, वो उस जगह की सख्ती को तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। बल्कि सख्ती को तो क्या बर्दाश्त करना, जो उस दुनिया के अंदर अगर किसी को नेमतें मिलेंगी ना, तो उन नेमतों को भी एंजॉय करना इस बदन के बस की बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारा इस दुनिया के अंदर तो पेट कितना छोटा सा है, राइट, थोड़ा सा खाएं और पेट भर जाता है और खाया ही नहीं जाता। अब जन्नत में तो इतने बड़े बड़े फल होंगे, इतनी जबरदस्त किस्म की पीने की चीजें होंगी, तो अगर इतना थोड़ा सा पियेंगे और खाएंगे जितना इस दुनिया में पीते खाते हैं, तो फिर तो एंजॉय नहीं कर सकेंगे सही तरीके से उतनी बड़ी बड़ी नेमतों को। तो इस वजह से ना उस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा जिस्म अता किया जाएगा जन्नतियों को भी, ताकि नेमतों को अच्छे से एंजॉय कर सकें, और दोजखियों को भी, ताकि अजाब के ऐसा ना हो कि दूर से ही जो है वो भी अजाब उनके करीब ही नहीं आया और वो मेल्ट हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि इतनी गर्मी होगी जहन्नुम के अजाब के अंदर। ठीक है, तो इतना तो कम से कम बड़ा जिस्म होगा और सख्त जिस्म होगा कि वो अजाब जो है वो शुरू होगा, तकलीफ शुरू होगी, और उसको कुछ देर तक झेलने के बाद फिर मौत आएगी, और फिर उसके बाद दोबारा से बना दिया जाएगा, फिर वो अजाब झेलेंगे, फिर मौत आएगी, फिर दोबारा से बना दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी एक सख्त जान जिस्म चाहिए कि इस अजाब को कम से कम थोड़ा सा नाउजुबिल्ला एंजॉय तो कर सके अजाब को। ठीक है, तो इस वजह से ना ये गज की जो पैमाइश की जो लिखी है उन्होंने, तो अब वो गज भी जो है वो उसी हिसाब से बहुत बड़ा होगा। आगे इस अजाब की वजह बताते हैं कि ये शख्स खुदाए बुजुर्ग पर ईमान ना रखता था, यानी जिस तरह ईमान लाना हस्बे तालीम अम्बिया जरूरी था, वो ईमान ना रखता था। क्या मतलब, अम्बिया ने जो तालीम दी थी ना कि ऐसे ईमान लेकर के आओ, तो ये अम्बिया की बात नहीं मानता था। ठीक है, वरना तो अल्लाह पर ईमान रखता था, लेकिन अम्बिया के बताए हुए तरीके के मुताबिक ईमान ना रखता था, तो सारा का सारा मसला ही ये है। ठीक है, कि अम्बिया की बात नहीं मानता था, और खुद तो किसी को क्या देता, औरों को भी गरीब आदमी के खिलाने की तरगीब ना देता था। हासिल ये कि खुदा की अजमत और मखलूक की शफकत, जो असल इबादात मुतअल्लिका हुकूकुल्लाह व हुकूकुल इबाद हैं, ये दोनों का तारिक और मुनकिर था, इसलिए मुस्तहिक अजाब हुआ। ठीक है, यानी हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह पर ईमान लाना, यानी नबी पर ईमान लाना, और हुकूकुल इबाद यानी इंसानों के साथ अच्छा मुआमला करना, ये दोनों का तारिक भी था, यानी छोड़ दिया था इसके इन दोनों कामों को, छोड़ा हुआ था, और मुनकिर भी था कि नबी इसको जो भी करने को कहते थे ना, ये नहीं करता था ना। तो देखें, काफिर सब जानते हैं ना इस बात को कि काफिर गरीबों की मदद करते हैं, चैरिटी प्रोग्राम्स काफिरों के मुसलमानों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है ना, मशहूर है ये बात कि जितना बड़ा मिलियनेयर या बिलियनेयर होता है, उसके चैरिटी स्पेंडिंग्स उतनी बड़ी होती है। बिल गेट्स बड़ा मशहूर है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी, हालांकि वो सबसे अमीर है नहीं, ठीक है, लेकिन मशहूर है, सबसे बड़ा अमीर आदमी। ठीक है, तो उसके चैरिटी अकाउंट सब आपने सुना होगा, बिल गेट्स फाउंडेशन और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसकी बीवी का नाम है मेलिंडा, तो उसकी फाउंडेशन, अब वो पूरी दुनिया में अफ्रीका के अंदर चैरिटी के उन्होंने कितने मंसूबे चलाए हुए हैं, इंडिया के अंदर खास तौर पे जाते हैं और वहां पे इतने बड़ी बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। ठीक है, तो चैरिटी तो ये करते हैं, ठीक है, और इस चैरिटी में बाकायदा लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक भी करते हैं, लोग बहुत फायदा उठाते हैं इनकी चैरिटी से। ठीक है, तो यहां पर फिर अल्लाह ताला किसके बारे में बात कर रहे हैं कि काफिर तो गरीबों को खाना ही नहीं खिलाता। ठीक है, तो यहां पर भी वही बात है जैसे इससे पिछली आयत में है ना कि अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, हालांकि अल्लाह पर ईमान तो ये रखते हैं, गरीबों को खाना नहीं खिलाते, हालांकि गरीबों को तो ये खाना खिलाते हैं। दोनों का एक ही जवाब है, वो क्या जवाब है, आप रिपीट कर दीजिए, बता तो चुके हैं हम और यहाँ किताब में भी लिखा हुआ है। क्या जवाब है? हालांकि का यानी फिर इस एतराज का जवाब क्या है? ये तो खिलाते भी हैं, ये तो अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं, तो फिर क्यों उनको सजा दी जाएगी? ये कहते हुए कि ना इन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, ना इन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया, क्या वजह बनी इसकी? दोनों बातों की क्या वजह बनी? ठीक है, जरा क्लियर कर लें। नहीं भाई, ये झूठ हर जगह झूठ का लफ्ज को थोड़ी, वो तो एक अलग सवाल आपसे किया था जिसका जवाब झूठ था, अब यहाँ पर एक अलग सवाल, हर सवाल के जवाब में एक ही लफ्ज को थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और कोई जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके जवाब दे दें खुलासा तफसीर में। अल्लाह पर ईमान लाते थे लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि नहीं लाते थे, तो क्यों कह रहे हैं ऐसा? गरीबों को खाना खिलाते थे लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं नहीं खिलाते थे, क्यों कह रहे हैं ऐसा? जी, तो ये तो चले आपने लिखी हुई चीज को यहाँ पे कॉपी कर दिया ना, तो अब इसी के ऊपर अब अगले सवाल का भी जवाब दे देना कि गरीबों को खाना खिलाते थे लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं खिलाते थे, क्यों? बोलो ये जो आपने ऊपर जवाब लिखा है ना, हस्बे तालीम अंबिया नहीं लाते थे, तो इसी के अंदर KHI भी ऐड कर दें, KHI लाते के साथ ऐड कर दें तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा। हस्बे तालीम अंबिया नहीं खिलाते थे, ठीक है, बात समझ आ रही? कि ये खिलाते तो थे लेकिन हस्बे तालीमे अंबिया नहीं खिलाते थे, ये ईमान लाते थे अल्लाह पर लेकिन हस्बे तालीमे अंबिया नहीं लाते थे, ठीक है, ये बात यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, कि ये अल्लाह पर ईमान भी लाते थे और ये मिस्कीनों को खाना भी खिलाते थे लेकिन, लेकिन के बाद क्या है कि हस्बे तालीमे अंबिया ईमान नहीं लाते थे। मैं जरा लिख दूं इसको, आप कॉपी अपने पास लिख लो। ये दो दूंगा, हस्बे तालीम अंबिया ईमान नहीं लाते थे और हस्बे तालीम अंबिया खाना नहीं खिलाते थे, ये वजह बनी इनके जहन्नुम में डाले जाने की। जी, मतलब अंबिया जकात देने की तालीम देते हैं क्योंकि उसमें ही गरीब गरीबों का हिस्सा है। नहीं, एक्चुअली यहां पर तो जकात की बात हुई नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि जकात जो होती है ना वो तो ईमान वाले के ऊपर फर्ज होती है जो मुसलमान हो जाता है, ठीक है, अब वो जकात नहीं देता तो जकात ना देना गुनाह का काम है जिसकी वजह से सजा मिलती है, ठीक है, लेकिन यहां पर तो ईमान वाले की बात ही नहीं हो रही ना कि भाई गुनाहगार ईमान वाला है जो जकात नहीं देता, नहीं, यहां पर तो उसकी बात ही नहीं हो रही, यहां पर तो बात हो रही है काफिर की। हस्बे तालीम अंबिया क्या मतलब है? बहुत अच्छा क्या आपने पूछ लिया। हस्बे तालीम अंबिया का मतलब है अंबिया अलैह सलाम की टीचिंग्स के मुताबिक, ठीक है, अंबिया की टीचिंग्स के मुताबिक, यह है हस्बे तालीम अंबिया का। हसब का मतलब होता है मुताबिक, ठीक है, अब इसके ऊपर एक बहुत ही गहरा पॉइंट है, वैसे इतना मुश्किल नहीं लेकिन गहरा पॉइंट है, तो वो आज की क्लास में बयान करके क्लास खत्म करें या अभी खत्म कर दें कि हस्बे तालीमे अंबिया ईमान नहीं लाते थे, हस्बे तालीमे अंबिया खाना नहीं खिलाते थे, ठीक है, तो फिर कैसे ईमान लाते थे, कैसे खाना खाना खिलाते थे, ठीक है, क्या उसके अंदर डिफरेंस था। तालीम अंबिया के तरीके में और इनके तरीके में फर्क क्या था। खाना खिलाए खिलाने का तो एक तरीका ही है। हाँ, हाथ में निवाला बनाए और मुंह के बंदे के मुंह में डालने, यही एक तरीका है खाना खिलाने का। यहाँ पर ये नहीं है कि अंबिया जो है वो उनको कहते थे कि चमचे से खाना खिलाओ, और ये लोग चमचे की बजाय जो है वो हाथ से निवाला बना के खाना खिलाते थे, या इसको उल्टा कर लें कि अंबिया जो है वो हाथ से खिलाने को, जैसे कि हमें पता है ना कि हाथ से खाना सुन्नत है, तो अंबिया जो है वो हाथ से खाना खिलाने को कहते थे और ये लोग चमचे से खाना खिलाते, ये मतलब है इसका। ये फर्क था इनके तरीके में और अंबिया के तरीके में। नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल, ठीक है। तो फर्क क्या था फिर? तो खाना खिलाने के तरीके में जो फर्क था ना, वो तो फिर जरा सा मुश्किल है समझना। ईमान लाने के तरीके में फर्क तो आप सबको पता है कि ईमान लाने के तरीके में क्या फर्क था, इनका तरीका ईमान लाने का और अंबिया ने जो तरीका सिखलाया था ईमान लाने का, इन दोनों में क्या फर्क था। ये लोग अल्लाह ताला को खुदा तो मानते थे, मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह ताला को मानते थे, खुदा मानते थे, राजिक भी मानते थे और खालिक भी मानते थे। तो फिर नबी अलैहि सलाम ने कौन सी नई बात बताई इनको आगे जिस पर ये अमल नहीं करते थे। अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने में नबी अलैहि सलाम ने इनको क्या बात बताई। ये लोग क्या करते थे अल्लाह के साथ, शिर्क करते थे, राइट, शिर्क करते थे ना, यानी अल्लाह ताला की इबादत करते थे, अल्लाह ताला को खुदा मानते थे, लेकिन अल्लाह ताला के साथ दूसरों को भी शरीक ठहराते थे, पार्टनर्स ठहराते थे। तो ये जो तरीका था ना ईमान लाने वाला, शरीक के साथ अल्लाह ताला पर भी ईमान और दूसरों पर भी ईमान, ये अंबिया के तरीके के खिलाफ था। अंबिया क्या कहते थे? सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और किसी और की इबादत नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत। और ये कहते थे नहीं, अल्लाह की भी इबादत और दूसरों की भी इबादत, ये डिफरेंस था तरीकों में, ठीक है ना। ये डिफरेंस था इनके तरीके में ईमान लाने के और अंबिया के बताए हुए ईमान लाने के तरीके में, ये डिफरेंस था, ठीक है। इसी तरीके से खाना खिलाना, तो खाना खिलाना अंबिया क्या सिखाते हैं कि जब तुम गरीबों को खाना खिलाओ तो अल्लाह की रजा के लिए खिलाओ, आखिरत की जजा के लिए खिलाओ, ये तुम्हारी नियत होनी चाहिए। अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा, ये तुम्हारी नियत होनी चाहिए, ठीक है ना, ये नियत होनी चाहिए। लेकिन ये जो खाना खिलाते थे, इनकी नियत क्या होती थी? अपनी रजा और दुनिया की जजा, अपनी रजा और दुनिया की जजा, यानी अल्लाह की रजा नहीं, आखिरत की जजा नहीं, बल्कि अपनी रजा और दुनिया की जजा, यानी दुनिया में कोई फायदा होगा। दुनिया में क्या फायदा हो सकता है? जैसे आपने लिखा रियाकारी, रियाकारी तो एक फायदा है, रियाकारी होता है कि आप कोई काम करें नेकी का दूसरों की नजरों में खुश, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए, ठीक है। लेकिन एक ये भी तो हो सकता है ना कि आप नेकी का काम किसी के ऊपर करें ताकि वो आपको रिटर्न करे, आपके साथ भी नेकी का काम करे, राइट, रेसिप्रोकेट करे आपकी नेकी को, आपके एहसान को। तो ये रियाकारी नहीं है, रियाकारी तो होती है कि जब पॉपुलैरिटी के लिए आप नेकी करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नेकी करते हैं, ठीक है। लेकिन एक नेकी किसी के साथ ये भी होती है ना कि वो भी तो मेरे साथ नेकी करेगा ना, तो यानी दुनिया में जजा चाहिए मुझे, दुनिया में जजा चाहिए, राइट, और आई फील गुड अबाउट इट। इसको उर्दू में क्या कहेंगे? अपनी रजा के लिए, सो दैट आई फील गुड अबाउट इट। जैसे कि सारे नॉन मुस्लिम्स कहते हैं ना, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील गुड, तो इस वजह से आई हेल्प समवन, राइट? तो अल्लाह की रजा तो ना हुई ना, ये तो अपनी रजा हो गई ना इसके अंदर। तो ये डिफरेंस होता है काफिर की नेकी में और मोमिन की नेकी में, तो ये डिफरेंस होता है ना, ठीक है? तो इस वजह से ये लोग अल्लाह पर ईमान भी लाते थे और ये लोग मिसकीनों को खाना भी खिलाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों की नफी कर दी। ना ये ईमान लाते थे ना ये मिसकीनों को खाना खिलाते थे, इसलिए कि इनका ईमान उस वक्त काबिल कबूल होगा जब ये अंबिया के तरीके के मुताबिक ईमान लेकर के आए, यानी तौहीद। और इनका गरीबों को खाना खिलाना उस वक्त काबिल कबूल होगा जब ये अंबिया के बताए हुए तरीके के मुताबिक ईमान लेकर के आए, सॉरी, अंबिया के तरीके के मुताबिक गरीबों को खाना खिलाएं, यानी अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा के लिए। अब पिक्चर कंप्लीट है, ठीक है? अगर जाहिर है मैंने तेज तेज बातें करी हैं तो मिस आप बहुत सारी चीजें कर दी गई होंगी, कर दी होंगी, लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने रिकॉर्डिंग वाली सहूलत हमें, ये नेमत है रिकॉर्डिंग की, ठीक है? तो उसको आप थोड़ा सा प्ले कर लीजिएगा आखिरी के 10-15 मिनट, तो सारी चीजें फिर आपको रिपीट हो जाएंगी, नोट भी कर लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है? यहाँ पे क्लास रोकना जरूरी है क्योंकि काफी एक्स्ट्रा टाइम भी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम।